हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज इस पावन अवसर पर रामनवमी। और ये एक ऐसा पर्व है जो कि पूरे भारत ही नहीं, जहां जहां पर भी लोग भगवान राम को जानते हैं, सबके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर है। जब शुरू में कभी टीवी देखा करते थे, एक धार्मिक चैनल में ये दिखाया कि किस प्रकार पूरे विश्व भर में भगवान राम के नाम से सिटीज के नाम हैं, पूरे विश्व भर में, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका जैसा देश हो। तो कहीं ना कहीं दिखा रहे थे कि कितने सारे नगर या कितने सारे स्टेट्स में भगवान राम के नाम से स्टेट्स के नाम हैं या छोटे छोटे नगरों के नाम हैं, क्योंकि राम तो सभी के जो हैं ईश्वर रहे हैं। ये तो समय काल परिस्थिति के अनुसार जब योग्यताएं छिन्न भिन्न हो गई लोगों की, तो भगवान को फिर अलग अलग अवतारों में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर, है ना, अपना ही पूजन, अपनी ही भक्ति अलग अलग ढंग से करानी पड़ी। नहीं तो पूरा का पूरा विश्व जो है सब भगवान राम के भक्त हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे प्रभाव, जैसे कि सत्ययुग में धर्म पूरी तरह से रहता है लेकिन समाप्त होते होते 25% खत्म हो जाता है, त्रेता युग में और तेजी से खत्म होता है, द्वापर युग में शुरुआत में तो 50% खत्म हो चुका था, अंत तक 75% खत्म हो गया और अब केवल एक स्तंभ बचा है धर्म का, है ना। तो बताते हैं सत्य पर चल रहा है सारा कुछ, बाकी सारे के सारे जो धर्म है उसके पैर टूट चुके हैं और ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि फिर स्थापना की जाएगी सत्ययुग की। तो कितना महान जो है हमारा इतिहास है, कितना महान जो है हमारे पास धरोहर है हमारे इतिहास की, लेकिन जितना महान इतिहास है, जितना ग्लोरियस हमारा मोमेंट है ये हमारा भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद, उतना ही नुकसान भी है क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका है। और कलयुग बताते हैं, उस दिन प्रभु जी भी एक्सप्लेन करते हैं कितने अवगुण हैं इस कलयुग में, दोषों का सागर है। और बस यही मेंटेलिटी बनाए रखना कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं और मुझे जो है भगवान की ही भक्ति मेरा जो है लक्ष्य होना चाहिए, ये याद नहीं रहता। और जब जब ये भूल जाते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, हम लोग माया में गिर जाते हैं, या फिर से हम लोग जब भगवान को भूल गए या आत्म साक्षात्कार को भूल गए तो फिर एकदम हमारी स्थिति जो है माया में गिरे हुए व्यक्ति की तरह हो जाती है जब जब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान राम के जीवन में भी हम देखते हैं, पूरा का पूरा रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी आज से लगभग, प्रभुपाद जी बता रहे थे कल अपने लेक्चर में, कि 20 लाख साल पहले ये घटना घटी, भगवान राम जब इस त्रेता युग में यहां पर रहे, और इतने लंबे समय की बात है तब ये घटना घटी। भगवान राम का सुंदर आचरण, उनका सुंदर परिवार, उनका सुंदर राज्य, है ना, राम राज्य जिसे कहते हैं, तब से लोग आज तक भगवान श्री राम की जो है क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चना वर्षिप कर रहे हैं। ऐसा एक आदर्श जीवन भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्थापित किया। इतना सुंदर जीवन कि एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा रेसिप्रोकेट करना चाहिए, एक राजा होते हुए अपनी प्रजा का कैसे ख्याल रखना चाहिए। तो इतना आदर्श जीवन कि आज तक लोग उस आदर्श जीवन को पढ़कर सुनकर जो है अपने जीवन को चला रहे हैं। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, है ना, कि श्रेष्ठ लोग जैसे समाज में आचरण करते हैं सामान्य लोग उनको फॉलो करते हैं। तो भगवान जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने केवल इसी की ओर ध्यान रखा, आचरण की तरफ विशेषकर। और हम देखते हैं उनका पूरा जीवन, हर कर्म जो था, हर एक्टिविटी जो थी, हर डीलिंग जो थी, वो अपने आप में आज उसका गुणगान गाया जाता है, उसकी उसके लिए कथाएं होती हैं, एक एक एक्टिविटी एक एक खंड पर सप्ताह चलते हैं, भगवान नाम की कथाएं होती हैं। और भगवान के जीवन में देखते हैं अगर हम परिस्थितियां, या जब रामायण इत्यादि पढ़ते हैं तो कितने प्रसंगों में जब कथाएं सुनाई जाती हैं, श्रीमद् भागवतम से भी कोट की जा रही है, या जो इतिहास में घटित हुई घटनाएं, भगवान राम भी निमि की और नूर निरग राजा निरग भी बताते हैं, हरे कृष्णा, वो भी कोट करते हैं कब, जब जब वो ये सुनते हैं, अपने अपने एक दूत को बुलाते हैं और कहते हैं कि बताओ कि राज्य में क्या चल रहा है आजकल, एक राजा को किस प्रकार हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए राज्य के प्रति, राज्य के प्रति, इसके विषय में भी वो बड़े जागरूक थे। उन्होंने कहा कि राजा बन गए, रावण को मार दिया, लंका से अब वापस आ गए हैं, राज्य मेरे हाथ में है, सब ठीक चल रहा है, तो जरा बताओ कि समाज में क्या चल रहा है, मेरे विषय राज्य के विषय में लोग क्या बातें कर रहे हैं, और वो सब भी बताओ जो मुझे प्रिय नहीं लगे, है ना। लेकिन जनरली लोग हम सुनना चाहते हैं वो सब बातें हैं जो जो प्रिय लगे, जो हम अच्छा कर रहे हैं, अरे भाई जो अच्छा किया उसको एडवर्टाइज करो ना, है ना। लेकिन ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहते जहां से हमें कुछ सीखने को मिले, या जो शब्द हमें क्रिटिसाइज करते हो, या जिनको सुनकर हमें अपने को ठीक करना हो। तो उन्होंने पूछा कि बताओ, मैं भी कुछ सुनता हूं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें मुझसे कुछ डरने की जरूरत है, अभी बताना चाहिए, बताइए क्या है। तो उन्होंने बताया कि बस सब जगह यही चर्चा है कि आपने रावण को मार दिया, है ना, आपने जो है लंका पर विजय कर दी, विभीषण को बिठा दिया, तो अब जो है हर जगह ये चर्चा। कहते नहीं, इसके अलावा भी मैं कुछ सुनता हूं, इसके अलावा भी मैं कुछ सुन रहा हूं कि मेरे बारे में या राज्य में, मेरे राज्य के प्रति कुछ घटनाएं तो हो रही है। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ चीजें हैं। कहते हाँ कुछ मैंने भी सुनता हूं, जैसे सीता माता को लेकर कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने जो है उनको वापस अपने साथ राज्य में ले आया हूं, इस विषय में कुछ बताओ। तो बड़ा संकोच करते हुए उन्होंने बोला कि हाँ महाराज ऐसा है, लोग कह रहे हैं कि सीता लगभग एक साल रावण के साथ रही उनके राज्य में, और अब आप उनको अपने साथ ले आए, तो लोग ये चर्चा करते हैं। और लोग कई बार अच्छाई की चर्चा बिल्कुल नहीं करते, अच्छे मार्ग की, अच्छे कर्म की चर्चा उतनी नहीं करके, जैसे बताते एक ब्लैक व्हाइट शीट पर ब्लैक स्पॉट और दूर से दिखाई देता, चर्चा भी उसी की होती है, देखो काला है, है ना। तो वही चर्चा चल रही है कि आप जो है सीता माता को अपने पास रखे हुए हैं। तो ये सुनकर भगवान राम को सुना तो पहले भी था, उनको लगा कि हाँ बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मुझे जो है कुछ करना होगा। तो भगवान राम ने क्या किया, वो सीता माता जो उनकी एटर्नल एसोसिएट है, उनके साथ हमेशा उनकी अंतरंग शक्ति है, जिनके साथ वो इस धरा पर आए इतनी सुंदर लीला करने के लिए, जन्मों जन्मों का जिनका संबंध है, हमारे जैसे नहीं, यहां पर हमारे यहां तो शादी में होता है व्यक्ति बोलता है कि 7 जन्मों का संबंध है ना। तो जैसे एक बार हस्बैंड वाइफ भी भगवान के मंदिर में आए, उन्होंने बोला कि चलो कुछ मांगते हैं भगवान से, है ना। तो मांगकर पत्नी ने पूछा आपने क्या मांगा, पति ने बोला तुमने क्या मांगा, कहते नहीं पहले आप बताओ, कहते नहीं पहले आप बताओ, कहते मैंने यही बोला कि हमारा 7 जन्मों तक साथ चलता रहे। तो कहती आपने क्या मांगा, कहते कहता कुछ नहीं, मैंने तो ये बोला मेरा ये जन्म ही 7वां हो। तो यहां तो 7 जन्म क्या, 1 जन्म का भारी पड़ता है लोगों को, और 1 जन्म भी क्या बात करें, 7 साल भी कहते हैं आजकल भारी पड़ते हैं, 7 साल की भी बात क्या करें, आजकल 7 महीने भी भारी पड़ते हैं। और कई केसेस में तो हमने सुना और देखा पढ़ा कि 7 हफ्ते, एक जगह तो 7 दिन भी भारी पड़ गए। शादी करने के बाद बड़ी स्टार थी वो, उसने शादी कर ली और 2 दिन बाद उसने डाइवोर्स दे दिया कि नहीं मैंने नशे में थी उस टाइम, तो इसलिए चेंज हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि एक आदर्श आचरण किस प्रकार पेश किया, और वो सीता माता जो उनके साथ, उनके देखिए अभी नई नई शादी हुई है, है ना, और अब राज्याभिषेक होने वाला भगवान राम का, घर से जब लड़की जाती है, माता पिता बड़े खुश होते कि आप इसका विवाह हुआ है, इतने अच्छे परिवार में, रघु रघु वंश में इनका जन्म, इनका जो है जाना हो रहा है। तो माता पिता पूरा जनक जो राज्य था जनक जी का बहुत खुश थे। होता भी है, हम लोग जब कभी देखते हैं किसी परिवार में विवाह हो, कोई लड़की किसी परिवार में जाए तो इतना खुश रहती है कि इतना अच्छा परिवार मिला है, पढ़ा लिखा लड़का है, इतना बड़ा पैकेज है ना, और इनका अपना घर है ना, गाड़ी भी शुरू से है ना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। वो बात अलग है कि करेक्टर पे ना आजकल नहीं सोचते लोग, है ना, उसी की वजह से ये 7 साल 7 जन्म से कम होता होता बड़ा कुछ हो गया। तो ये सारी चीजें तो देखी जाती हैं, और उधर भी देखा गया, करेक्टर वाइज भी देखा गया, सब कुछ देखा गया, दशरथ जी के राम सबसे बड़े पुत्र। तो और जब इस तरह का कहीं पर रिश्ता पक्का होता है या शादी होती है तो खासकर सहयोगी लड़कियां जो सहेलियां हैं वो बहुत खुश होती हैं, है ना, कि तुम्हें ऐसा परिवार मिला है, ऐसे जाओगे, है ना, ऐसे करके तो पहले बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। अब तो रानी कहलाओगी, है ना, और बस क्या था, थोड़ा सा केकई जी ने इसमें और मंथरा जी ने ऐसा गेम खेला है, विलेन वाला सीन हो गया, है ना, मंथरा जी का संग प्राप्त हो गया, है ना, ऐसी उनकी तीसरी वाइफ थी दशरथ जी की, उसको भी बहुत प्यार करते थे, वो भी दशरथ जी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सब खत्म हो गया जब मंथरा जी ने उनके कान में ये बोल दिया कि क्या कर रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, तुम्हारा अपना बेटा भरत बनना चाहिए राजा, वो याद है तुम्हें 2 वर जो तुमने मांगे थे, जो मांगे नहीं थे इन्होंने दिए थे, और अब मांगो, उसको सही समय आ गया। तो बस थोड़ा सा अतसंग हुआ और कैकेयी जी ने अपना चेंज किया, होलिया, और कोप भवन में बैठ गई। दशरथ जी आए, आज क्या बात है, लाइट बंद है, है ना, फास्ट तो नहीं है, एकादशी भी नहीं है, क्या चक्कर है, ऐसे क्यों बैठी हो कोई कुकिंग नहीं, कोई स्मेल नहीं आ रही, कुछ खाने पीने की। तो उन्होंने बोला, भाई आप मेरे वर दीजिए जो हमसे मांगे थे। और जब मांगा तो दशरथ जी कहते हैं कितनी बार फेंट हुए, कितनी बार गिरे, ये सुनकर किसने मांग क्या लिया, सुनकर ही उनके कान, मतलब वो कितनी बार फेंटे, बट जब उठे, जब फिर कॉन्शियसली उठते थे कि अब कुछ बोलूं, उसको कुछ गालियां देते थे, कुछ उल्टा बोलते थे, फिर गिर जाते थे कि मांग क्या लिया इसने। फिर कई बार बोले तो उसकी जगह कुछ और मांग ले, पूरी पृथ्वी का राज्य कुछ और दे दूंगा, पूरे कुछ भी मांग लो। लेकिन फिर जब उनको आता था कि इसने मांग के लिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन वो कह रहे थे अपने वचन बदल लो, है ना, क्या बोल दिया तुमने, ये बोलने के बाद फिर वो गिर जाते थे। फिर एक बार उन्होंने करेज करा और फिर से बोला कि तुम जो चाह रही हो ना कि मैं ऐसा कर लूं, तुमने जो दौर मांगे, मैं नहीं करने वाला इसको, जाओ जितना रोना है रो लो, जितना पीटना है पीट लो, कुछ नहीं करने वाला मैं। लेकिन फिर वो गिर गए, उनको मालूम था इसने मांग लिए, और कुछ फिर से उठे और नहीं ज्यादा देर तक उस एक्टिंग को कर पाए कि मैं एज अ राजा तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हारा पति एज तुम्हें बोल रहा हूं, कि नहीं, नहीं हुआ इस तरह। फाइनली जब उनको सुना, भगवान श्री राम ने बुलाया गया और पता चला, अब आप सीन देखिए, श्री राम मर्यादाओं का पालन करते थे अपने पिता के चरणों पे हैं, और पिता ने बोला बेटा ऐसा ऐसा बोल दिया तुम्हारी माता ने, है ना, वो तो बोलने के लिए भी करेज नहीं था। फाइनली उनको जाना पड़ा, और सीता माता जो इतने सपने संजो कर आई थी और वो बिल्कुल तैयार थी कि मैं साथ चलूंगी। आजकल इस तरह के सीन नहीं देखे जाते क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी गांवों में या शहरों में भी कई ऐसे केसेस होते हैं जहां इतना पति के प्रति, धर्म के प्रति इतना जिसे फॉलो किया जाता है। अगर आजकल के ऐसे केस में हो जाए कि जब शादी से पहले बताया था कि 12 लाख का पैकेज है, है ना, घर बार सब कुछ अपना है, लेकिन विवाह के तुरंत बाद अगले दिन पता चला कि वो बंगला तो किराए का था जो दिखाया गया था, और जो प्रॉपर्टी के पेपर थे वो देखे नहीं थे, जाली थे, बन जाते हैं आजकल, और जो पैकेज बताया था कि ये कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है, तो वो विजिटिंग कार्ड भी अपने सेम जैसे नाम छपा के 300 रुपए में छपते हैं, 100 कार्ड तो वो वाले दिखाए थे। तो और बाद में पता चला कि 12 लाख का पैकेज नहीं है, 12,000 का पैकेज है पर मंथ। तो लड़की जो है वो क्या बोलती है, नहीं नाथ, नहीं स्वामी, ऐसा नहीं है, मैं तो आपके साथ ही हूं, आपके साथ चलूंगी वुमन सेल तक। लेके चलूंगी पूरे परिवार को, है ना, धोखा किया आपने मेरे साथ, है ना, नंबर मुझे मालूम है क्या है, पूरा जीवन कौन बिताएगा भाई, खुद तो भीख मांगेगा, मुझसे भी भीख मंगाएगा, है ऐसी स्थिति। तो ये जो श्री राम जी का चरित्र, जो सीता माता का चरित्र, जो इन्होंने जो ये आदर्श स्थापित किए, वो लगभग लाखों साल से लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे। ये तो इस कलयुग में बंटाधार हुआ है, अब हुआ शुरू, जब ये नारद जी इत्यादि ने देखा भाई क्या हो गया, व्यास देव जी ने देखा लिखना पड़ेगा सब कुछ, कैसे लोग होंगे, कितने दुष्कृति के लोग होंगे, दुर्बुद्धि लोग होंगे, मंद बुद्धि लोग होंगे, और इस प्रकार ये लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़े। तो सीता माता जी ने उस परिस्थिति को बहुत इजीली एक्सेप्ट किया, क्योंकि पति के साथ रहना ही उनके लिए बहुत ऊंची बात थी। और फिर लक्ष्मण जैसा भाई, छोटा भाई, है ना, आजकल घरों में तो छोटा भाई सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, जब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े घरों में भाई भाई जो गले लगाते थे अब वो गला दबाते हैं। लोगों ने बताया क्या बोली, जब से ये फ्लोर सिस्टम, जब से मकान के रेट बढ़े 3 साल पहले से, अब तो भगवान की कृपा से कम हो गए रेट, कुछ समय पहले जब ये रेट बढ़ गए, जो भाई बहन हाथ हाथ में रक्षाबंधन का धागा बांधते थी, जो भाई भाई कस्में खाते थे, इलाके में बोलते थे परिवार हो तो ऐसा, एक दूसरे को मरने के लिए तैयार रहते थे, अब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। हमने देखा है, आप लोग भी देखते होंगे, आज देखिए केवल एक प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है, लाखों से करोड़ों में गई है, बस 1 करोड़ की हो गई है, 2 करोड़ की हो गई है, बस घर में सब लोग चिंतित है कि एक तो जो ये बुजुर्ग लगे जाएंगे कब, हिल तो रहे जाने रहे हैं, है ना, और ऊपर से वो उनको भी मालूम है कि मैं गया या नहीं गया, अगर इनके नाम कर दिया तो ये आज मुझे डस्टबिन में डाल देंगे बाहर। न्यूज़पेपर में था, हम लोग सेमिनार में देते थे, अभी तो बहुत घटनाएं शुरू हो गई इस तरह की, तो आज ही मुझे, तो वो देते नहीं है, नहीं दूंगा, नहीं डालूंगा, नहीं करूंगा साइन, उसको मालूम है कि आज किया तो इन्होंने कल मुझे ओल्ड एज होम भेज देना या घर से बाहर निकाल देना, और बच्चे लोग सब आशा कर रहे हैं कभी ना कभी तो, है ना, कभी तो होगा कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, कब जाएंगे, है ना। और फिर वो दोनों भाई या तीनों भाई, जो चारों भाई हैं, वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अच्छा ना भी हो, मान लीजिए कई बार भाइयों में इतना प्रेम होता है, बचपन से खेले कूदे इकट्ठे, तो कई बार लगता है कि नहीं पैसा प्रॉपर्टी हमारे बीच में नहीं आएगी, लेकिन घर में और भी तो रह रहे हैं लोग, और जो और लोग रह रहे हैं उसमें सीता जैसी माताएं भी हैं कलयुगी, जिनको अभी भी जनकपुर से फोन आते हैं कि तुम्हारा कितना है, अभी कितना रह गया, अब कौन सी वाली प्रॉपर्टी तुम्हें मिलने वाली है, बताइए। घर में रोज बोल बोल के बोल बोलकर अच्छे अच्छे व्यक्तियों के कान क्या जिंदगी खराब हो जाती है। अच्छा खेलता खिलकारियां मालता हुआ परिवार, ज्वाइंट फैमिली, आप चले गए तो वो संभाल रहे हैं, वो चले गए तो ये संभाल रहे हैं, सब चल रहा था, सारा का सारा वो कल्चर खत्म हो गया, है ना। रामलीलाएं रामायण केवल याद है, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, या वो 10 दिन की छुट्टियों में बच्चों को कभी कभार ही जाते हैं देखने के लिए कि चलो जी एक राम का सीन देखें, ताड़ का आएगी वो और वो आग लगाएगी, मुंह से मिट्टी का तेल करके फेंकेंगे, ये देखने जाते हैं, ये सीन रह गए, है ना, और हनुमान जी को देखने जाते हैं, लंका में आग लगाएंगे और केले फेंकेंगे हमारी तरफ, केले कैच करने जाते हैं लोग, है ना, और आखिरी दिन विजयदशमी के दिन भी जाते हैं कि कौन से रावण में कितने पटाखे डले हुए, कि उसका रावण कितनी देर तक जलता है। केवल ये त्योहार जो है ये बम पटाखों का रह गया। अभी केरला में भी एक फेस्टिवल हुआ कोई, उसमें भी पुलिस से परमिशन मांगी, सर हम यहां पटाखे जलाते हैं, भगवान को पसंद है, लोगों को पसंद है, एंटरटेनमेंट अच्छा होता है, जितने ज्यादा पटाखे बजते हैं लोग उतनी देर तक खड़े रहते हैं, तो हमें क्या करना है, पटाखे बजाने की अनुमति दीजिए। प्रशासन ऊपर ऊपर से कहता नहीं मत बजाओ, फिर भी लाते हैं लोग, खरीदते हैं, ऐसे पटाखे बजे मंदिर की छत ढह गई, 125 लोग मर गए, जल गए, 500 लोग घायल हो गए, जल गए, सड़ गए, आधे आधे शंख इधर उधर चले गए, है ना, एंटरटेनमेंट हो गया, बताइए। तो ये उत्सव, ये जो त्योहार हैं, ये केवल इस प्रकार आप देखते हैं, हम लोग बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं इन तरह के इन प्रोग्राम्स के, कोई लेना देना नहीं है राम से, कोई लेना देना नहीं है दिवाली में भवन राम लंका पर विजय प्राप्त करके रह रहे हैं घर, हमें किससे लेना देना है, मुर्गा छाप पटाखों से, है ना, कौन सी दुकान के कितने ऊपर जाकर कैसे खुलता है, कैसे फटता है ना, केवल इन चीजों से रह गए। और दिवाली केवल लक्ष्मी और गणेश जी को इकट्ठा बिठाकर पूजा करने तक रह गए, कोई मतलब नहीं है भगवान की लीलाओं का श्रवण हो जाए, कीर्तन हो जाए, कोई मतलब नहीं है भगवान ने कैसा आदर्श पेश किया था और हम कैसे जी रहे हैं, है ना। दशरथ एक बार पति ने बोला अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए, तुम्हें मालूम है तुम्हें कब से सह रहा हूं, मतलब दशरथ की कितनी पत्नियां थी, वो मतलब ये बताना चाह रहा था कि मतलब मैं भी तीन कर सकता हूं, तो कहती है तुमने द्रौपदी के बारे में सुना वो कहता नहीं मैं तो मजाक कर रहा था कथा कहानी केवल इन चीजों के लिए, कोई मतलब नहीं है भगवान से, कोई मतलब नहीं उनकी शिक्षाओं से। अगर आज उन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उन कथाओं का श्रवण कीर्तन घर में होना शुरू हो जाए, तो घर फिर से अयोध्या बन जाएगा, है ना, घर फिर से वृंदावन बन जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं जिस दिन मैं देखता हूं घर में कीर्तन हो रहा है ना, जिस घर में कीर्तन हो रहा है वो गोलोक है, वो गोलोक धाम बन जाता है ना। हम लोग और गोलोक धाम, हमारा जो धाम है, जो घर है और गोलोक धाम है, उसमें केवल इतना ही अंतर है कि हमारे घरों में भगवान उनकी शिक्षाएं नहीं है और गोलोक धाम में भगवान उनकी शिक्षा और उनकी चर्चा है, केवल इतना डिफरेंस। मतलब अपने जीवन में जो निरानंद है इसलिए है क्योंकि आनंद नहीं है, आनंद मतलब राम, है ना। तो राम के बगैर अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सुखी रहूंगा, खुश रहूंगा, अपनी मटेरियल स्किल्स और एक्सपर्टीज से मैं खुश रह सकता हूं, मुझे प्लान मालूम है किसमें इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, तो कोई फायदा नहीं। आप कितने इन्वेस्ट कर लीजिए, कितने पैसा ले लीजिए, बैंकों में पड़ा पड़ा सड़ जाता, कितने लोग मर के चले गए। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कुछ हजार करोड़ के लिए जिनके लोग जमा करा के मर चुके थे, कोई निकालने वाला नहीं आया, कोई सालों से पड़े, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 60 हो गए, एंट्री नहीं है। उन्होंने अखबार में दिया लोगों के नाम, भैया अगर हैं जिंदा हैं तो आ जाओ एक बार, नहीं तो क्या करेंगे, जब्त हो जाएगा। कितना बचाता है, टैक्स बचाता है, व्यक्ति खाता नहीं है, जूता नहीं पहनता, नया है, सर पे रख के चलता है, खराब ना हो जाए, दो वक्त की रोटी खाता है, सबसे सस्ती सब्जी लेकर आता है तो पैसे बचाता है, रिक्शे वाले से मोल भाव करता है, 20 नहीं दूंगा 15 दूंगा, 5 रुपए वहां से बचाए, बैंकों में भर लिया, काम नहीं आया, समझ, कहां कहां कंजूसी नहीं करते हम, लेकिन वो पैसा ऐसे पड़ा रह जाता, मालूम नहीं धन का इस्तेमाल क्या है। फिर वो धर्म ऐसा काम करता है, जैसे एक बार हमने दीनानाथ प्रभु जी से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी लोगों को कैसे इंस्पायर करें डोनेशन के लिए, उन्होंने केवल एक छोटा सा एग्जांपल दिया, कहा कि धन जो है जो हम कमाते हैं वो धन ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाए बड़ा सुंदर, लेकिन ऊपर पानी निकलने की निकासी के लिए छेद ना बनाए, पाइप ना लगाए, अब देखो क्या होगा, धन आ रहा है, वर्षा हो रही है, और क्या हो रहा है, वर्षा का पानी छत पर ही है, एक दिन दो दिन चार दिन, उसके बाद क्या होता है, अचानक वो सुंदर 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 दीवारों, बर्जर पेंट वाली दीवारों पर ऐसी नकाशी करता है, लोग कहते हैं कहां से करवाए, उसमें थोड़ी सी लाइट और लगा तो अच्छा लगता देखने, तो वो सीलन कर देता है ना, बदबूदार मकान हो जाता। क्यों? क्योंकि उसी तरह जो ये धन है, जब ये धन का निकास नहीं होता, आ रहा है और निकास नहीं हो रहा है, अगर ढलान नहीं है, पाइप नहीं लगा है निकालने का, तो क्या करता है ये हमारे सुंदर बर्जर पेंटेड वाले घरों में, सुगंधित घरों में क्या करता है, ये दुर्गंध पैदा कर देता है, बीमारियां पैदा कर देता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि इन तीन कार्यों को कभी नहीं रोकना चाहिए। इवन ये पावन करते हैं लोगों को, यज्ञ दान और तप। तो इस प्रकार ये जीवन मूल्य खत्म से हो गए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण ने कहा भगवान मैं भी चलूंगा साथ में, मैं यहां रहकर क्या करूंगा। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कहा चलो मैं अपनी वाइफ भी ले लेता, इनकी बहन तो है, जनक जी की पुत्री तो है वो भी, उर्मिला जी, साथ ही चलते हैं। बट वो सेवा के भाव से गए थे, इंजॉयमेंट के भाव से नहीं गए थे। तो पूरा जीवन उन्होंने, जब जब 14 साल वहां रहे, पूरा जीवन उनका सेवा का था, लेकिन 14 साल कहते सोए नहीं लक्ष्मण कभी। सेवा भाव देखिए, सोए नहीं कभी, पहले खाना नहीं कभी, कंदमूल लकड़ी इकट्ठी करके लाना, तो सेवा, इतना सेवा भाव मिलता। हनुमान जी से कितने प्रसन्न हुए, अंगद और हनुमान को भगवान ने अंत में अपनी गोदी में बिठा लिया, कहा तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। इतना ही नहीं कि बाकियों को छोड़ दिया, कहा ये सब वानर सेना ने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम सबको अपने भाई के समान देखता हूं। भगवान राम बोले, कई बार होता है ना कि सेवा करने वालों को लगता है मुझे कुछ पहुंचा नहीं, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, है ना। लीडर का तो ग्लोरिफिकेशन हो गया, हनुमान जी का पत्थर तो हमने भी मारे थे, है ना। तो कई बार फील होता है कि भाई हमें देखा नहीं, हमने बर्तन हम पीछे धो रहे थे, मुझे लगा दिया, फिर मैं किसमें, वाइंड अप सेवा में। वाइंड अप सेवा कोई देखता है? प्लेट इकट्ठी करो कौन देख रहा है, या मुझे लगा दिया तारे इकट्ठे करने में, ये करने में। नहीं, भगवान राम एक एक वानर को बोल रहे कि तुम सब मेरे भाई के समान हो, और सबको गले लगाया। तो राजा होने के नाते, उनसे सेवा लेने के नाते, है ना, कितनी मदद करी भगवान ने, उनके हर हर एक व्यक्ति का क्या किया, सम्मान, उसकी यथोचित सम्मान किया। गिलहरी का सम्मान किया जो थोड़े थोड़े कण समुद्र में डाल रही थी अपने शरीर पर लपेट कर। तो भगवान प्रेजेंटेशन से ना जज कर इंटेंशन से जज करते हैं। प्रेजेंटेशन भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इंटेंशन, कि किस भाव से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, किस भाव से हम भगवान के पास आ रहे हैं। इस संसार में लोग, हो सकता है हमारी गलतियों के कारण हमको तिरस्कार कर दें, हमारे द्वारा हुए पापों के द्वारा हमको तिरस्कार कर दें, हमारे को स्कूल में आए हुए मार्क्स के बेसिस पर ब्रिलियंट, एवरेज या फेल स्टूडेंट्स घोषित कर दें, इसी चीज से देखते हैं ना संसार। लेकिन भगवान अपने भक्तों को उनकी केवल और केवल भक्ति और सद्गुणों के हिसाब से देखते हैं। कितना ही बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, उसके अंदर भी अगर छोटा सा गुण है, उसने भी छोटी सी सेवा कर दी, भगवान उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये भगवान की भगवत्ता में और चांद चांद लगाता है, क्योंकि भगवान से जब भक्तों का संपर्क होता है, उनकी सेवा करते हैं, और जो वो सेवा करके रिलिश करते हैं उस चीज को, तो वो फील करते हैं भगवान की एग्जिस्टेंस को, भगवान की प्रेजेंस को, भगवान की कृपा को। नहीं तो ये बिजनेस कब का बंद हो चुका होता, कितने कितने नास्तिक आए, कितने कितने बड़े बड़े नास्तिक आए। आप देखिए भक्ति का जो ये प्रोसेस है आज तक खत्म नहीं हुआ, युगों से चल रहा है। लोगों ने जीवन समर्पित किया, लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया भगवान के प्रति, जबकि कोई हर व्यक्ति यही बोलता पहले दिखाओ तो मानूंगा। एक ऐसी चीज के प्रति जो दिखाई नहीं देती, जो सुनाई नहीं देती, जिसको फील नहीं कर सकते आप, लोग जीवन समर्पित कर चुके हैं, लोग अपना एक एक अंग, अपना एक एक कर्म उनके प्रति समर्पित कर चुके हैं। क्यों, क्या कारण है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। क्योंकि भगवान कहते हैं जो जिस डिग्री में जिस मात्रा में जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए जब जब जिस व्यक्ति ने अपने वाणी से अपने कर्मों से अपने इंटेंशन से भगवान को पूजा, भगवान ने स्वीकार किया, और लोग आज भी चाहे कितने बड़ा नास्तिक हो जब उस पर संकट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है तो उसको लगता है यार मांगना चाहिए, पड़ता आता है मंदिर और बोलता है खुश तो बहुत होगे तुम आज, हो सकता है पहली बार मैं ऐसा बोले, लेकिन उसको मालूम है यहीं पर आना है, उसको मालूम है इन्हीं को सर इन्हीं को चरणों में सर झुकाना है। नास्तिक भी हो आखिरी में उसको फंसना पड़ता है, नहीं जैसे प्रभुपाद जी को किसी व्यक्ति ने बोला कि प्रभुपाद आप जो हैं या आपके शिष्य लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, माला लिए घूमते हैं, ड्रेसिंग सेंस चेंज, हेयर स्टाइल चेंज, फूड स्टाइल चेंज है ना, कितनी तपस्या करते हैं, सुबह सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, पूरा जीवन एक ही मंत्र जपते रहते हैं, हमको तो बड़ा बोर लगता है ना, कैसे कर लेते हैं ये? और अगर इतना कुछ कर रहे हो आप और अगर अंत में ये पता चले जिसकी पूजा कर रहे हो वो भगवान है ही नहीं, तो गया ना सारा बेकार हो गया। प्रभुपाद जी ने कहा कहते देखो ऐसा है कि जितनी हम तपस्या करते हैं, अगर हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो सत्वगुण में बड़ा अच्छा लगता है, आप उठे ना, आप उठते ही होंगे सभी, तो सुबह कोई व्यक्ति जल्दी उठ जाए, जो व्यक्ति रोज लेट सोता है वो सुबह जल्दी उठ जाए उसको लगता है बड़ा दिन मेरा कमाल हो गया, सारे काम हो गए, फ्रेश एयर में पहली बार सांस लिए, नहीं तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड में और उसमें ले रहे हैं 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद। तो कहते सुबह जल्दी उठकर फायदा, ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने का फायदा, हेल्थ अच्छी है, चैंटिंग करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं सुबह से लेकर, भगवान का गुणगान करते हैं, गाते हैं, तो ये सब करके ही हमारा प्रोसेस इसको फॉलो करके ही हम लोग इतने खुश हैं, ये लोग इतने खुश हैं। और मान लो अगर एक बात आपकी मान ले आपके हिसाब से कि मान लीजिए कि भगवान नहीं भी है, तो जिस प्रकार का लाइफस्टाइल हम जी रहे ये अपने आप में इतना अच्छा लाइफस्टाइल है कि दुनिया इसके लिए लालायित है, इस तरह के लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी सेहत, अच्छी है ना, बढ़िया तेज खाना पीना, भगवान के प्रसाद खाना, कोई नुकसान नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना, कोई अप्स एंड डाउन नहीं है ना, कोई इतनी एंजाइटी नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, क्या लाइफ है, ऐसा लाइफ देखा है किसी का? प्रधानमंत्री भी नहीं जी सकता जबकि उसके आगे आसपास दुनिया के भर के नौकर हैं उसके आसपास, तो भी वो नहीं जी सकता जैसा कि एक भक्त अपना जीवन इतना सरल बना के जी सकता है। तो कहते हैं कि अगर नहीं भी हुए तो भी जिस तरह से हम जी रहे हैं वी आर वेरी हैप्पी। कहते लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, आप मानते हो भगवान नहीं है इसलिए उल्टे सीधे काम करते हो, यही सोच करके भगवान एग्जिस्ट नहीं करते और ये सब रूल्स रेगुलेशन पालन करना बेकार है, अपने को रिस्ट्रिक्ट करना बेकार है, खाओ पियो ऐश करो पाप करो नो वरीज, आपका मानना ये है क्योंकि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, तब ये आप ये करते हो और ये सब करने के बाद भी इतने दुखी हो, परेशान हो, एंजाइटीज में हो, तो कहते हैं अब आपसे प्रश्न करता हूं, अगर भगवान अब हुए तो उनकी ये सब टीचिंग्स हुई तो तुम्हारा क्या होगा? भाई हम तो उनको मान रहे हैं और जिस तरह का लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं तो भी बड़े खुश हैं, आप लोग उनको ना मानकर उल्टे सीधे काम कर रहे हो उसमें भी दुखी हो, उसमें परेशान हो, उसमें भी इनसिक्योर हो, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं आपके हिसाब से, हमारे को तो मालूम है करते हैं, तो वो सब नियम भी आप पे लगने वाले हैं है ना। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री राम और जितने भी भगवान ने अवतार लिए उन सब अवतारों का जो प्रयोजन, केवल और ये प्रयोजन कि उनसे जो आदर्श स्थापित करें वो लोग फॉलो करें। आज तक इसलिए इस बिजनेस में कभी कमी नहीं हुई, लोग आज भी भगवान को सर्वस्व निछार करते हैं, आज भी अपना धन, अपना तन, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान उनको उनकी ऑफरिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और उनको पता चलता कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जब वनवास गए उसके बाद इतने सारे असुरों का वध किया, रावण तक का जो है वध किया भगवान ने, और उसके बाद जब सब कुछ करके वापस आ गए, सीता माता को भी अर्जुन उसको लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण आप जाओ छोड़ने के लिए। कितना प्रेम करते थे सीता माता से, उनके लिए कितना रोए जब रावण ने उनको हरा। पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, इस धरा से पूछ रहे हैं, है ना, विलाप कर रहे हैं एक साधारण व्यक्ति की तरह, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वो सीता जो उनको प्राणों से ज्यादा प्रिय थी, और उसके लिए इतना बड़ा युद्ध, उसके लिए ये सब किया भगवान ने। अब वही सीता के बारे में जब सुना कि लोग, मेरे राज्य के लोग कह रहे हैं कि एक साल तो वहां रही ना, तो भगवान राम को लगा कि अगर मैंने आदर्श स्थापित नहीं किया इसमें भी, है ना, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 20 लाख साल पहले, कि अगर मैंने आदर्श स्थापित नहीं किया तो ये रीत बन जाएगी कि कल को अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री अपना घर छोड़कर कहीं भी रह ले, किसी के पास भी रह ले, और फिर समाज में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, अधर्म, अधर्म शुरू हो जाएगा। तो इतने 20 लाख सालों तक तो चला, ये तो केवल अभी कुछ हजारों सालों में कलयुग के आने से ये प्रथा शुरू हुई है कि नो प्रॉब्लम, कंधे से कंधा मिला के चलो, पुरुष को जितनी स्वतंत्रता है स्त्री को भी उतनी स्वतंत्रता दो। पुरुष अगर बिजनेस टूर में बाहर रह सकता है तो हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड के यहां रह सकते हैं। अगर वो नाइट आउट कर सकता है तो हम भी नाइट आउट कर सकती हैं। अगर वो पी सकते हैं सिगरेट्स तो हम भी पी सकते हैं सिगरेट्स। अगर वो शराब ले सकते हैं, ड्रिंक ले सकते हैं, इस तरह की लिकर्स ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, तो हमने कौन से पाप किए। तो 5000 साल पहले तक की प्रथाएं बहुत अच्छी थी। गांवों में अभी भी कहीं संस्कार हैं, लेकिन धीरे धीरे, है ना, मनोरंजन की दुनिया में इस मन को रंजन करने के चक्कर में सारे संस्कारों की क्या दे दी, आहुति दे दी, संस्कारों की आहुति दे दी, है ना। और धर्म जो है बहुत तेजी से क्षीण हो रहा है, और कलयुग जिस प्रकार, जिस तेजी से बढ़ रहा है, ये जो जीवन मूल्य है समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इस अंधकारमय कलयुग में केवल मात्र एक ही जो है रोशनी की किरण है, और वो है यह हरे कृष्णा आंदोलन। इस हरे कृष्णा आंदोलन से फिर से धर्म की स्थापना हुई, हो रही है। आप सोच सकते हैं क्या, जिस कल्चर में ये, जहां से ये कल्चर आया, जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं, डिग्रेडेड कल्चर, उस देश के लोगों ने इस कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में उतार लिया। उस देश के लोगों ने शरीर पर पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। उस देश के लोगों ने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया, सर पर पल्लू रखना शुरू कर दिया, शिखा रखना शुरू कर दिया, पुरुषों ने धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को स्लॉटर हाउसेस में पढ़ने के लिए ना भेजकर घर में होम स्कूलिंग शुरू कर दी। कितना बड़ा अजूबा है कि कोई भारत का व्यक्ति को विदेश में जाए। भारत का व्यक्ति विदेश में तो केवल पैसे कमाने जाता है, और क्योंकि वहां से कोई नहीं देख रहा तो नियम तोड़ने जाता है, लेकिन अचानक देखता है, अरे साड़ी में दिख रही है भी लेडी, ये साड़ी में, ये सच में साड़ी पहनी है या कुछ अलग से कुछ है, नहीं नहीं साड़ी लग रही है, तो बड़ा आश्चर्य होता उनको। पुरुष को देखते कीर्तन करते हैं सड़कों पर, जो लंदन जाता कहता सर हमने कीर्तन देखा, रोज कीर्तन निकालते, क्या मतलब क्या स्थापना की है प्रभुपाद जी ने धर्म की। राम राज्य इससे शुरू होगा, इस तरह से आएगा राम राज्य। आज घर घर में जिसने भी कृष्ण भक्ति को अपनाया है वो गोलोक है, वहां राम राज्य है। भक्त लोग ने, शुरुआती भक्तों में दिक्कत आ सकती है जब तक कि वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के प्रति सीरियस नहीं है, या इसको केवल एक ट्रेंड के रूप में लेते हैं, या एक स्टेटस सिंबल के रूप में लेते हैं कि हम डिस्काउंट जाते हैं, बोलो ना डिस्काउंट। तो जब तक नहीं वो संस्कार ले रहे, कृष्ण भक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ रहे, सीख रहे साइंस को, तब तक समस्या है लोगों के साथ, भक्तों के साथ भी। लेकिन जिन लोगों ने इसको, कृष्ण भावना को ठीक प्रकार से अपने जीवन में उतार लिया है या उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां राम राज्य है। राम राज्य को बहुत मुश्किल थोड़ी है। अयोध्या जैसा जीवन, भक्तों का जैसा जीवन कोई मुश्किल नहीं है। केवल जो रामायण पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है या जिसने ये ग्रंथ इत्यादि महा ये श्रीमद भागवतम पढ़ा है, वो जी रहे हैं उसको अपने जीवन में। वो करते हैं रेस्पेक्ट अपने माता पिता की, वो करते हैं रेस्पेक्ट अपने भाई अपने परिवार के सभी लोगों की, वो देते हैं सब लोगों को पूरा का पूरा सम्मान, वो उतार रहे हैं इसको अपने जीवन में, वो है राम राज्य उस परिवार में। तो इस प्रकार घर घर में जब कृष्ण भक्ति पहुंचेगी, है ना, भगवान राम का गुणगान पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से वो राम राज्य कहलाएगा। तो हमें शुरुआत करनी चाहिए अपने परिवार से कि पहले मैं एक घर में क्या लाऊं, राम राज्य लाऊं, राम को बुलाकर। और राम कैसे आएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना आसान हो जाएगा, पहले एक घर से शुरुआत करें। जब ये इतना बड़ा मूवमेंट एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में शुरू कर सकता है, तो क्या हम अपने परिवार से एक परिवार को राम राज्य की तरह नहीं जी सकते, बना सकते? पूरी कॉलोनी में हमारा परिवार अलग, क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त है। तो एक परिवार, दो परिवार, 10 परिवार, 100 परिवार, 1000 परिवार, इस प्रकार घर घर में राम, है ना, राम राज्य। तो ये तब आएगा जब इन जीवन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतारेंगे, जब इन ग्रंथों को पढ़कर इतनी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तब आएगा राम राज्य। तो इसी तरह हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग राम राज्य को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। और विशेषकर जिस दिन, जैसे आज ये दिन है, तो इस दिन रामायण, वैसे तो आप रोज भागवत पढ़ते ही होंगे, तो आज रामायण भी पढ़ें। इन दिनों में रामायण पढ़ना शुरू करें, जौन से फेस्टिवल आने लग जाए तो उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के विषय में पढ़ना जरूर चाहिए, ताकि हम उनसे शिक्षाएं ले सकें। ठीक है, हरे कृष्णा।